सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ ಕಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಪರ್ವ ಕಾ ಅಂತಿಮ ದಿವಸ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಚೇತನಾ ಕಿ ಪರಿಣತಿ ಕೋ ರಾಗಾದಿ ಸೆ मुक्त रखना उत्तम ब्रह्मचर्य है। किसकी परिणति? चेतना आत्मा को कहते हैं। चेतना की परिणति को रागादि भावों से मुक्त रखना उत्तम ब्रह्मचर्य है। तप त्याग तो बाहरी अनुष्ठान है, परंतु ब्रह्मचर्य तो भीतरी अनुष्ठान है। चेतना की परिणति को निर्विकार रखकर ब्रह्म को ब्रह्मा बनाने की कला हासिल कर लेना ये उत्तम ब्रह्मचर्य है। इस कला को हासिल करने के लिए केवल दो पदार्थों का रागादि भाव त्याग करना पड़ता है, एक चेतन पदार्थ और दूसरा अचेतन पदार्थ। ये दोनों अज्ञानी आत्मा के लिए आकर्षक होते हैं और ज्ञानी जीव के लिए केवल ज्ञेय बनकर रह जाते। अज्ञानी नीचे के पांच गुण स्थानों में तीन कषायों की भूमिका में रहता है और ज्ञानी संज्वलन कषाय की भूमिका में रहकर भी उत्तम ब्रह्मचर्य में रहते हैं। यह उत्तम ब्रह्मचर्य का संक्षिप्त सार है। अब विस्तार सुनो। आत्मा अनादि है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी भी है, भविष्य काल में भी यह रहने वाला है, इसका विनाश तो है ही नहीं। चक्षु इंद्री के द्वारा दो पदार्थ आत्मा को हमेशा दिखने वाली पदार्थ, उसमें से एक पुद्गल है और एक जीव है। जीव भी शरीरधारी है तो दिखता है, शरीरधारी नहीं है तो दिख नहीं पाता। हम जब भी देखने का कोशिश करते हैं तो दिखने में दो ही पदार्थ आते हैं। वैसे छह पदार्थ हैं, किंतु दो पदार्थों को ही देखा जा सकता है, एक जीव को और दूसरा पुद्गल को। देखने वाला कौन है? इन दो पदार्थों में से देखने वाला कौन है? वो जीव है। जो अजीव है वह देखता नहीं। टोटल जो छह पदार्थ हैं उनका नाम उल्लेख करें तो छह द्रव्यों का नाम ही यहां लेना पड़ेगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका नाम लेना पड़ता है क्योंकि छह से ज्यादा पदार्थ तो है ही नहीं। और इन छों में से एक चेतन है और पांच अचेतन है। बहुमत किसका है? अचेतन का बहुमत है। वास्तव में ये छह की अपेक्षा से हमने तुलना कर दी, अब केवल दो को ले लेते हैं, एक जीव और एक पुद्गल। एक जीव और एक पुद्गल, इन दोनों को सामने रखकर विचार करें बहुमत किस द्रव्य का है। पुद्गल द्रव्य का बहुमत है और जीव के सामने पुद्गल को माइनस करके अन्य चार द्रव्यों को रख करके तुलना करें तो जीव बहुमत में आते हैं और अन्य एक एक ही। उसमें यदि काल पदार्थ को, काल द्रव्य को विचार किया जाए तो जीव के बराबर नहीं। जीव अनंत हैं यदि तो वो असंख्यात है। काल कालानुओं की अपेक्षा से प्रत्येक कालानु काल द्रव्य है। वे कालानु इस लोक में असंख्यात हैं। जीव उससे ज्यादा है। कितने हैं? अनंत अनंत। प्रथम नंबर में कौन आएगा? पुद्गल आएगा। फिर सेकंड नंबर में कौन आएगा? जीव आएगा। और थर्ड नंबर में कौन आएगा? काल आएगा। फिर बाकी का कितने नंबर में? चौथे नंबर में। सब एक एक हैं और एक एक हैं तो चौथे नंबर में उनको रख दो। हम जब भी अपनी चेतना की परिणति को चिंतनशील रखते हैं तो चिंतन की उस धारा में हमारी दो अवस्थाएं बनती हैं, एक निर्विकार अवस्था और एक स्वीकार अवस्था। स्वीकार अवस्था बने बिना हम सकार कहीं घूम नहीं सकते। कार सहित हमारी आत्मा की उपयोग की परिणति जब तक स्वीकार नहीं बनेगी तब तक हमारे पास कार नहीं आ सकती। हम सकार नहीं हो सकते और कार का सहकार हमारे लिए मिल नहीं सकता। सहकार, सकार और यह चेतना चेतना है, सबका ज्ञाता है, सबका दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा बन के रहना तो आत्मा का स्वभाव है, पर अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने स्वभाव को तिरोहित कर, अपने स्वभाव से च्युत होकर जब भी कुछ कार्य करेगा तब कार लेकर के घूमेगा, और ये कार बिल्कुल हमेशा बेकार, कार 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 के लिए सारा जीवन बेकार हो गया। एक कार लेना था और एक कार को लेने के लिए एक जीवात्मा में कितने हर्ष विषाद राग द्वेष करते हुए वह उस कार की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। चेतना एक ऐसी कार है जिसमें बैठने के उपरांत बहुत स्पीड से हम यहां से वहां हो सकते, इतनी स्पीड से हम कार में बैठ करके जा नहीं सकते, जितनी स्पीड से हम अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाएं और स्वभाव की सिद्धि हो जाए तो एक समय में 14 राज्यों स्पीड से हम भाग सकते। जब यह आत्मा समस्त कर्मों को विनाश करके मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में सिद्धालय की ओर गमन करता है कितने महीने लगते हैं? एक समय लगता है, एक सेकंद में असंख्यात समय होते हैं, उसमें से एक समय में ही आत्मा यहां का वहां हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? ये उत्तम ब्रह्मचर्य का प्रभाव। उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण किए बिना ऐसी शक्ति नहीं आ सकती, ऐसे गमन करने की शक्ति नहीं आ सकती। यदि आती भी है तो वह गमन भी निरर्थक है। स्वीकार बनकर की भी यह कार बहुत वेग से जा सकती है, चेतना की कार जाती नहीं है ऐसी बात नहीं, बहुत स्पीड से यह कार जा सकती है, लेकिन जाते जाते इसके जो भागने वाले चक्र है ना, ये आउट रहते हैं, और आउट रहने वाले चक्र कार गाड़ी के अगर वो आउट के साथ घूमेंगे और हमारी यात्रा होगी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी। उत्तम ब्रह्मचर्य इस कार गाड़ी के आउट को निकालने की प्रक्रिया सिखाता। स्वीकार बनना आउट है, ऐसा करेगा भागते समय चक्र। स्वीकार बनना आउट है, निर्विकार बनना सीधापन है। कार गाड़ी को स्पीड से जाने के लिए निर्विकारता चाहिए, गंतव्य स्थान पर जाकर के पुनः यह लौटकर नहीं आना चाहता है, वहीं रहना चाहता है, शाश्वत सुख की अनुभूति करना चाहता है, स्व में प्रतिष्ठित होकर के स्व की अनुभूति करना चाहता है, तो इसके लिए आउट चक्र चलेगा नहीं। अधोलोक में कोई भी जीव 7 राज्यों यहां से नीचे मरण कर सकता है, वहां से मरण कर सीधा सिद्ध भगवान जहां रहते हैं सिद्धालय में, वहां वह जन्म ले सकता है। लेकिन भरोसा नहीं, कैसा जाएगा भरोसा नहीं, जाने के लिए 4 समय लगते हैं, ऐसा जाकर ऐसा भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, मोड़ा लेकर के जा सकता है, अधिक से अधिक कितना मोड़ा ले सकता है यह जीव? 3 मोड़ा ले सकता है, और कितने समय को लेता है? 4 समय को लेता है। देखो ये 3 मोड़े और 4 समय क्यों लग रहे हैं? ये कार गाड़ी आउट है, इसलिए ऐसा 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 जा करके जाएगा, लेकिन 14 राज्यों यह भी जा सकता है। आत्मा के भीतर कुछ शक्ति नहीं, लेकिन गमन शक्ति वर्तमान में कुछ न होकर के भी 14 राज्यों जाने की गमन शक्ति है, और यह निर्विकार बन जाएगा तो उसकी महिमा ही क्या है। चेतना अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगमन करा करके ले जाएगा और जहां ठहराएगा वहां से फिर यह कार गाड़ी कहीं भी गमन नहीं करेगी। यह चेतना किसकी परिणति है? आत्मा की परिणति। आत्मा में किसकी परिणति? ज्ञान की परिणति। ज्ञान निरंतर दो पदार्थों को जान रहा है, देख रहा है, जान रहा है, देख रहा है, निरंतर काम चल रहा है, ये किसी जीव में भी रुका हुआ नहीं है। आप जरा आंख मीच करके भीतर झांक के देख लो, ज्ञान क्या काम करता रहता है पता चलेगा। कुछ न कुछ काम चल रहा है और वो लगातार चल रहा है, उसको आप एक सेकंड के लिए भी रोक नहीं सकते। मन को रोक सकते हैं भाग रहा है तो, लेकिन चेतना की परिणति को एक सेकंड के लिए भी रोकना संभव नहीं है। चेतना की भी एक शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग वह दो स्थान पर कर सकता है, बहिर्मुखी होकर बहिर् पदार्थों का ग्रहण करना तो सभी अवस्थाओं में है, चाहे मुक्त बनो चाहे संसारी बन करके रहो, दोनों दशा में आप अपने ज्ञान को प्रवृत्त करते हैं वस्तुओं को जानने के लिए, लेकिन जानते समय जो हर्ष और विषाद होता है ना, वो हमारी गाड़ी का आउट बना है, ये आउट निकालना पड़ेगा। तो आप अपनी गाड़ी को ले जाकर किसी कहां पर आउट निकाला जाता है, हाँ गैरेज, किसी गैरेज के यहां एडमिट करना पड़ेगा गाड़ी को। तो कहां एडमिट करे? तो इसके लिए तीन ही गैरेज हैं, तीन लोक में तीन ही गैरेज हैं, उसके बिना तो आउट निकाला नहीं जा सकेगा। अपनी गाड़ी को ले जाकर या तो सच्चे देव के सामने समर्पित कर दो, या तो गुरु के सामने समर्पित कर दो, या तो जिनवानी शास्त्र जिनवानी माता के लिए समर्पित कर दो। ये तीनों हमारे लिए आउट निकाल करके अपनी गाड़ी को वापस कर देते, रखते नहीं, क्योंकि रखा भी नहीं जा सकता। और गाड़ी को यदि रखेंगे तो गाड़ी को दूसरे गाड़ी को कोई देव रखें गुरु रखें तो वो देव नहीं और गुरु नहीं। गाड़ी को सुधार करके दिया जा सकता है, लेकिन गाड़ी को रखने का उनका नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को रखेंगे तो उनकी गाड़ी आउट में आ जाएगी। ये ऐसी परिस्थिति है यहां। उत्तम ब्रह्मचर्य को समझना बहुत कठिन है, समझ गए थोड़े में समझ गए तो बहुत सरल है, लेकिन भीतर और भीतर और अंदर जाकर समझते जाएंगे तो सारा रहस्य बाहर आता है। अपनी आत्मा अपनी चेतना के द्वारा क्या क्या करता आया है यह सामने आ जाता, और यह सामने आए बिना हम अपने गाड़ी के आउट को निकाल नहीं सकते, ये निश्चित बात है। आउट कब से है? ये आउट भी अनादिकाल से है, और आउट निकाले बिना हम इस गाड़ी को भगा रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं। जहां जहां यही गाड़ी, जहां जहां यही गाड़ी, उसी गाड़ी में बैठते हैं और उसी गाड़ी में यात्रा करते हैं। लेकिन जब आपकी गाड़ी किसी गैरेज के सामने से गुजरती रहती है तो गैरेज वाले कहते हैं, रुको रुको, गाड़ी कहाँ, चाक आउट है, गिर जाओगे, बहुत बड़ा हानिकारक है। ये चेतना है। आउट कहाँ है? तो चेतना में आउट है। इस आउट का नाम, इस आउट का नाम क्या है? हाँ, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। ये चाक कैसे घूमती है? राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। एक ही साउंड आ रही है, राग द्वेष, राग द्वेष। जब साइकिल पंक्चर हो जाए तो वह पंक्चर के साथ साथ आउट हो जाए, तो वह किसी न किसी कोने को घिसती रहती है, पिछले वाला या अगले वाला, दो चाक हैं, वो घिसते रहते। और साइकिल के दो चाक होते और एक हैंडल होता है, हैंडल कभी घिसता नहीं, घिसता है जो नीचे, वह चाक घिसता है, और चाक जब टकराता है किसी बाजू में तो हैंडल भी यूं होता है, यूं होता है, तो बैलेंस बिगड़ता है। ज्ञान का बैलेंस, ज्ञान हैंडल है, और ज्ञान का जो बैलेंस बिगड़ रहा है उसका कारण चेतना है। उस चेतना को चक्र कहा है। उस चक्र में जो राग द्वेष का आउटपना है वो घिस रहा है, बार बार घिस रहा है। उसके घिसने से हमारी साइकिल बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई। पिछले वाला चाक भी घिस रहा है, अगला वाला चाक भी घिस रहा है। सम्यक दर्शन अगला चाक, सम्यक चारित्र पिछला चाक है, सम्यक ज्ञान ये हैंडल है, और हमारे पांव जिस पर टिके रहते हैं वो पैडल है, वह पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ तो निरंतर चल रहा है, किंतु आउट निकाल करके पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसलिए गाड़ी यह गड्ढे में जा रही है। आउट निकालोगे क्या? नहीं। उत्तम ब्रह्मचर्य आज है, अंतिम दिन है, गैरेज में एडमिट कर दो, बहुत हो गया, अनादिकाल से ये आउट है, और इस गैरेज पर ठहरा दो, हम उस चाक को समझा देंगे, उस चेतना को समझा देंगे, उस ज्ञान को समझा देंगे। लेकिन एडमिट करने के लिए बहुत दुख की अनुभूति होती है, तो यहां पर मत ठहराओ इसको। सुख पर पूर्वक स्व इच्छा से इसको अर्पित कर दो, अपनी गाड़ी को। कर सकते? आप जितना कहेंगे उतना आउट अलग कर देंगे, थोड़े एक सेंटीमीटर का आउट निकालो तो एक सेंटीमीटर का निकालेंगे, जैसा परमिशन मिलेगा, जैसा परमिशन मिल जाए वैसा और हम पैसा नहीं लेंगे, फ्री में आउट निकाल करके तुम्हारी गाड़ी को वापस कर देंगे। थोड़ा सा आउट निकाल करके देखो तो सही कितना आनंद आता है, आवाज कम हो जाती है, साइकिल की बैलेंस सुरक्षित होने लगती है। थोड़ा थोड़ा करके इसको निकालना, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है, एक साथ नहीं जाता है। ये चेतना की परिणति बहुत बड़ी विचित्र परिणति है। अनादिकाल से नहीं होता और आज होता तो बहुत जल्दी हट जाता ये रागादि भाव, बहुत जल्दी अलग हो सकते थे, लेकिन इसको अलग करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब हमारी गाड़ी को हम गैरेज में एडमिट करते हैं तो आसान बन जाता है। 10 दिन से आप अनुभव कर रहे हैं, चेतना को जो अनुभूति मिल रही है उसमें चेतना हर्ष विषाद राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इत्यादि इन विकारी भावों को खोता जा रहा है या बढ़ाता जा रहा है। 10 दिन में क्या मिला आपको? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बहुत मिला। क्या मिला? वो उसका नाम क्या जो मिला? ज्ञान मिला। तो ज्ञान को ज्ञान मिला, ज्ञान को ज्ञान मिला, सम्यक ज्ञान मिला। और सम्यक ज्ञान यदि अंदर जाकर के काम करने लग जाएगा ना, यह आउट अपने आप ठीक हो जाएगा। हम ऐसा एक ऑयल डालेंगे वह अपने आउट को समाप्त करके राग द्वेष मुक्त होकर अपने में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करते हुए आपका ब्रह्म ब्रह्मा बनने की शक्ति को उपलब्ध कर लेगा, आत्मा की शक्ति को हम बहिर्मुखी रखकर यात्रा कर रहे हैं। आत्मा में अनंत बल है, इसको बहिर्मुखी रख करके हमारी यात्रा चल रही है। बहिर्मुखी शक्ति जब तक अंतर्मुखी नहीं होती तब तक उत्तम ब्रह्मचर्य की उपासना हम नहीं कर सकते। जीवन मिला है और यह जीवन एक पर्याय है, मनुष्य पर्याय। अपन कौन है? मनुष्य है। और हम जहां हैं यह खंड कौन सा है? आर्य खंड है। आउट निकालने के लिए जो 3 गैरेज है ना, वो केवल आर्य खंड में ही है। स्वर्ग में नहीं मिलेंगे ये गैरेज, नरक में भी नहीं और तिर्यंच गति में भी नहीं है। हमको आर्य कहा है। आर्य सुबह हमने बताया था प्रातः काल में, ये जो जीवन मिला है यह केवल पुरुष पर्याय का जीवन 8 ही बार मिलता है। सुना था ना, सुबह 8 बार मिलता है पुरुष को। पुरुष पर्याय आर्य खंड की पर्याय 8। आर्य खंड में मनुष्य बनने का भाग्य 8 बार। आर्य खंड में ही मनुष्य बन सके तो 8 बार बन सकता है, नहीं बन सके तो ये 8 कहां कहां फिर। म्लेच्छ खंड में भी जन्म ले सकता है, वहाँ भी मनुष्य पर्याय हमारे लिए मिल सकती है। भोग भूमि का मनुष्य भी हम बन सकते हैं, कुभोग भूमि के मनुष्य भी बन सकते हैं। बस मनुष्य बनने के चार ही स्थान हैं, एक आर्यखंड, म्लेच्छ खंड, भोग भूमि और कुभोग भूमि। चार जगह के चार शरीर को प्राप्त कर सकते हैं और पुरुष शरीर यह मिलता है, आठ बार मिलता है। यदि आर्यखंड का बिल्कुल न मिले ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भोग भूमि का मनुष्य बनकर जन्म लेने वाला भी आर्यखंड से ही जाता है, कहीं एकाएक ही वहां कहीं से उत्पन्न नहीं होता। पहला आर्यखंड में जन्म लेता है, फिर मनुष्य खंड का शरीर पा लेता है, वो भी एक पर्याय, ये भी एक पर्याय, मनुष्य पर्याय। अब यह मनुष्य पर्याय आठ बार, आप लोगों को आठ बार, आप लोगों को सोलह बार, और आप दोनों से ऊपर एक और होते हैं उनको 24 बार। ये 24 और आप दोनों को मिलाएंगे तो ये 24, 48 मनुष्य शरीर 48 बार मिलता है। अगर इसमें हम अपनी गाड़ी का आउट नहीं निकालते आठ बार में तो सब गया, फिर कहां जाना। हां, जब आप निगोद से आए थे ऐसा एक बीसा लेकर के आए थे, बीसा बोलते हैं उसको, विदेश जाने के लिए हमारा वीसा, वीसा बोलते हैं। जब हम निगोद में थे तो उस वक्त वही हमारा मूल निवास था, अनादिकाल से वहीं पड़े थे, वहीं रहे थे, कहीं बाहर थे ही नहीं। हम द्विंद्री पर्याय में नहीं थे, वनस्पति प्रत्येक पर्याय में नहीं थे, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय में नहीं थे। हम, हमारी आत्मा कहाँ थी। नित्य निगोद में, नित्य निगोद में। पहली बार जब ये बाहर आया तो या तो वनस्पति बना, या तो पृथ्वी कायिक बना, या तो जल कायिक, या तो वायु कायिक, अग्नि कायिक बना। फिर धीरे धीरे विकास प्रारंभ हो गया, वहां एक इंद्री बना, फिर द्विइंद्री बनने का अवसर मिला, द्विइंद्री बना, फिर तीन इंद्री बना, फिर चतुरेंद्री बना। एक एक इंद्रियों को ज्यादा करके यह शरीर को धारण करता रहा, लास्ट में पंचेंद्री बना और निगोद से सीधा आने वाला जीव दो ही गति में आता है। वहां से आकर के द्विइंद्री बनकर, तीनेंद्री बनकर, चतुरेंद्री बनकर, फिर पंचेंद्री भी बन सकता है, पंचेंद्री त्रिरंच बन सकता है, बंदर, हाथी, घोड़ा इत्यादि शरीर को धारण कर सकता है, या न करे तो वह मनुष्य आयु को बांधकर मनुष्य भी बन सकता है। द्विइंद्रिय अवस्था से, तीनेंद्रिय अवस्था से, चतुरेंद्रिय अवस्था से, बस यहां तक रुक जाओ यहां, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय जीव चारों गति में जा सकता। मन रहित असंगी जीव, चतुरेंद्रीय जीव नियम से दो ही गति में आता है, ये मक्खी है, ये पतंग है, तितली है, क्या बोलते हैं तितली को, फुलपंखर, चौरेंद्रीय जीव हैं ये दो ही गति में आते हैं मर करके। फुलपंखर मर करके फुलपंखर बन सकता है, मरण करके वह संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय त्रिरंच गति में भी जा सकता है, त्रिरंच है, त्रिरंच गति में ही जाएगा और मरण करके मनुष्य गति में भी आ सकता है। अब पहली बार मनुष्य बना, पहला जन्म मिला, ऐसे जन्म कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। आप लोगों को 16 मिल सकते, हम लोगों को 8 मिल सकते, तो 16 हम लोगों के लिए लागू नहीं होते हैं क्या? क्या वो दूसरे के लिए ही है? ऐसा मत समझना, ये 48 भव प्रत्येक आत्मा के लिए है। नहीं तो ऐसा सोच के बैठ जाएं कि हम वो हमारे 16 ही हैं और अन्य कुछ है ही नहीं। नहीं, 16 वाले 8 को भी पूर्ण करना पड़ेगा उनको। जब तक ये 48 भव तीनों मिलकर के 48 भव पूर्ण नहीं होंगे, तब तक आप निगोद नहीं जा सकते। ऐसा नहीं, आपकी मर्जी, बीच में भी जा करके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और नहीं जाना चाहते हैं तो 48 भव धारण करते हुए इनको पूर्ण भी कर सकते हैं। और यदि 48 पूरे पूर्ण हो गए तो आपके लिए कोई जगह नहीं। अब उस वीसा में जो 48 पर्याय लिखी थी वो समाप्त हैं। अब आप अपना देश जाइए, ये परदेश है, ये मनुष्य पर्याय परदेश है। हमारा देश कौन सा है? नित्य निगोद, नित्य निगोद। वहां से आए थे, वहीं पुनः जाएंगे, और वहां जाने के बाद हमारा केवल जो आते समय एड्रेस था ना, वो नित्य निगोद ऐसा लिखा हुआ था। परंतु जब हम 48 पूर्ण करके वहां पुनः चले जाते हैं तो वह नाम चेंज हो जाता है। आत्मा वही, वीसा वही, किंतु एड्रेस चेंज होगा, उसको काट देंगे, नित्य काट देंगे, इतर जोड़ देंगे, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक। नित्य को हटाकर इतर क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि आप विदेश रिटर्न है। हाँ, महत्व मिला वहां। निगोदी जीवों के बीच में नित्य निगोदी जीव अनंत अनंत हैं, उनके बीच में आप चले गए और नित्य काट करके इतर लिखा है। उन्होंने देखा, अरे आप तो महान काम करके आए, आप तो विदेश रिटर्न है, बहुमान मिलता है वहां। एनआर, एनआर है? अच्छा अच्छा, एनआर आए, अच्छा अच्छा, उसका लॉन्ग फॉर्म, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम पुनः वहीं पर अगर चले गए तो इतर निगोदी जीव हमारा नाम पड़ा। अब वो 8 भव पुनः मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, परंतु जब तक आप वहां से निकलकर निगोद नहीं आए तब तक तो मिलने वाले नहीं थे। अगर पुनः नया 48 भव चाहते हैं तो एक बार निगोद में जाना ही पड़ेगा, नियम से जाना पड़ेगा। और वहां से आते समय पुनः 48 अपने वीसा पर लिख करके लाना पड़ेगा, पुनः मिल सकते हैं। और ऐसा कितनी बार 48 48 48 मिल सकते हैं, इसकी कोई गणना नहीं कर सकते, अनंत बार मिल सकते। किंतु वहां जाने के बाद, इतर निगोद में जाने के बाद, इतर निगोद कोई सेपरेट स्थान नहीं, आपका नाम है वो, केवल नित्य नाम चेंज हो गया, इतर नाम पड़ गया, आप इतर निगोद में चले गए, इतर निगोद ही कहलाए। अब विचार करो, आप अनंत बार ऐसा आ सकते हैं और 48-48 भव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा 48 भव कितनी बार हमने पाया है? अनंत बार पाया, फिर भी हम संसार में क्यों हैं? हाँ हाँ, गाड़ी आउट है, हाँ। हम धर्म करते समय देखो, धर्म तो करना चाहते हैं क्योंकि धर्म आनंददायी, लेकिन हम यह आशा नहीं रखते कि हमारी गाड़ी का आउट निकाल करके धर्म करे। एक हाथ में इंद्रिय विषय चाहिए और एक हाथ में धर्म चाहिए। दो लड्डू चाहिए दो हाथ में, एक संसार का लड्डू और एक धर्म का लड्डू। जब मन होगा इसको खाएंगे, जब मन होगा इसको भी खाएंगे। ऐसा दोनों खाने वाले को सैमा सैमी कहा और एक ही खाने वाले को असयमी कहा। एक ही खाने वाले को और धर्म के ही लाड़ू को खाना, जिसका जीवन है उनको सयमी कहा है। वे ही हैं दिगंबर मुनि साधु। यह उत्तम ब्रह्मचर्य दिगंबर मुनि जीवन में ही प्रकट होना संभव है। श्रावक के जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं समझो कि उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल हमने एक आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो हमारे पास उत्तम ब्रह्मचर्य है। अगर ये समझेंगे तो उत्तम ब्रह्मचर्य जहां होता है वहां पर सारे 9 शेष जो धर्म हैं वो भी रहते हैं। ये 10 धर्म एक दूसरे को छोड़ करके रहते नहीं, और उत्तम शौच धर्म को प्राप्त करने के लिए, उत्तम संयम धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या त्यागा था हमने? 2 पदार्थ त्यागे थे, एक चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ। इसके स्वामित्व को छोड़ा था, इसके ममत्व को छोड़ा था, इसके राग द्वेष को छोड़ा था। यह राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष ये चेतन पदार्थ के कारण से ही हो रहा था, अचेतन पदार्थ के कारण से ही सब कुछ हो रहा था। कैसे संस्कार हैं देखो इस जीव के, सतत सतत राग द्वेष कर रहा है, पर वस्तु को ही चाहता है, त्यागता नहीं, और उसका त्याग आजीवन त्याग आवश्यक है। चेतन का भी आजीवन त्याग और अचेतन का भी आजीवन त्याग। अचेतन का भी आप त्याग कहां कर सकते हैं? आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया तो चेतन का त्याग नहीं हुआ। परिवार समेत घर में रहते हैं, अभी चेतन परिग्रह है ही, चेतन पदार्थ से राग द्वेष छूटा क्या? स्वामित्व समाप्त हो गया क्या? नहीं, ये हमारा बेटा है, ये भी ब्रह्मचारी है और हम भी ब्रह्मचारी हैं, हमारा घर आश्रम के समान है, हम सब ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, घर को आश्रम बनाया एक परिवार ने। क्यों बनाया? कल के दिन हमें भी उत्तम ब्रह्मचर्य की अनुभूति करना है, वो संयम अवस्था आए बिना उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है, इसलिए हम सर्वप्रथम मुनि आश्रम को, श्रमण आश्रम को श्रमणाश्रम बनाने से पहले गृहस्थाश्रम को आश्रम बनाना चाहते हैं। और बना भी लिया, क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे घर को आश्रम बनाए? नहीं महाराज, आश्रम तो वो कहलाता है जो गांव के बाहर हो, जंगल में हो, एकांत में हो और चार दीवार उठा करके उसके बीच में बैठे हो, तो आश्रम में है। उदासीन आश्रम उसका नाम, आश्रम का नाम उदासीन, रहने वाले उदासीन बिल्कुल नहीं है। आश्रम धर्म का आश्रम कहीं बाहर नहीं होता, हमारी आत्मा ही आश्रम है। इस आश्रम में रहने वाला जीव यदि अपनी चेतन की परिणति को ठीक रख करके चल रहा है तो वह उदासीन आश्रम में रहता है। रहने के लिए चाहे आप अपना घर बना लो, बाहर से बाहर का कोई महत्व नहीं रखता, चाहे अपने घर में रहो चाहे बाहर रहो, चेतना उदासीन चाहिए। चेतना की हमारी परिणति उदासीन है तो निश्चित आप उत्तम ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये समझा जाएगा। उत्तम ब्रह्मचर्य तो दोनों पदार्थों के स्वामित्व के त्याग से आता है। इंद्रिय विषय दो ही तो हैं, चेतन पदार्थ इंद्रिय विषय और अचेतन पदार्थ इंद्रिय विषय, दो ही पदार्थ इंद्रिय विषय। अन्य पदार्थों को अपना इंद्रिय विषय आप नहीं बना सकते। बना सकते? काल द्रव्य को इंद्रिय विषय बनाओ, उसको खाओ देखेंगे, काल द्रव्य को, उसको सुनो, उसको सूंघो, उसको चखो, बन सकता है? नहीं बन सकता। दो ही आते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन के ऊपर भी हमारा स्वामित्व होता है, अचेतन के ऊपर भी हमारा स्वामित्व होता है। विवाह का मतलब क्या होता है? जब आप विवाह कर रहे थे तो उसको क्या कहा था? मंगल विवाह। मंगल विवाह, विवाह करते समय विवाह को भी मंगल कहा, जबकि वो दंगल है। विवाह के पास, विवाह के पहले से ही दंगल शुरू होता है। घर में इसकी शादी नहीं, उसकी शादी नहीं हुई, अभी कर नहीं रहा है, ये मना कर रहा है या करना चाहता है, कितनी पहले से तैयारी चलती है उसकी। माता पिता इतना ही समझते हैं अपने संतान के संबंध में, हमने जन्म दिया है तो इसकी शादी करना है। ये ठीक है क्या? ये सोच एकांगी सोच है। और यहां देखो, दक्षिण प्रांत में धर्म के ज्ञान का अभाव होने के कारण एकांगी सोच रह गई, जो अनादिकाल से है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी सोच भी होना चाहिए। देखा देखी कुछ काम नहीं करना चाहिए। वह अपनी संतान क्या चाह रही है इसके संबंध में भी सोचना आवश्यक है, बहुत दूर का भी नहीं सोचना, पास का ज्यादा सोचना। आगे क्या होगा इसको ज्यादा सोचोगे तो भटकन होगा। बहुत दूर का भी नहीं सोचना, बहुत दूर का सोचने से भी दिमाग खराब हो जाता है, और जो अच्छे काम होना चाहिए वो अच्छे काम होने से रुक जाता है। अपनी संतान के संबंध में क्या विचार रखना चाहिए। दो रास्ते, एक बंधन का रास्ता और एक स्वतंत्रता का रास्ता। आपकी संतान को किस मार्ग पर सुख मिलेगा? स्वतंत्रता के रास्ते पर सुख मिलेगा। वह स्वतंत्रता की रास्ता क्या है? धर्म है, संयम है, ब्रह्मचर्य है। घर में ही रहो, घर छोड़कर त्यागी बनो, ये कोई जरूरत नहीं। बनना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो ऊंची छलांग है, वो भी करना चाहते तो कर लो। ऊंची छलांग भी मारना चाहते तो छलांग मारो, बहुत अच्छी बात है। किंतु अपने घर में हम रह सकते हैं क्या? नहीं। अपने घर में लड़की का जन्म हुआ है, माता पिता को शुरू से ही विकल्प आता है, इसका शादी करना है, इसका शादी करना है, इसका शादी करना है। हाँ, आता है कि नहीं आता? शुरू से। और लड़का हो तो शादी की विचार ही नहीं करता तब तक कि जब तक वो 25-30 साल का नहीं होगा, क्योंकि वो घर में ही रहने वाला है। पर घर से जो बाहर जाने वाले हैं उसके संबंध में ज्यादा सोचा जाता है। ऐसा क्यों सोचते हैं? घर से ढकेलना ही चाहते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, ढकेलनों को ही सोचते हैं, बस ये एक काम है और उस काम के लिए इतने हमने कमाया, ये शादी में खर्च करना है और इनको बाहर ढकेल दिया ना, जवाबदारी उनकी, चाहे वो गड्ढे में गिरे, सुखी हो दुखी हो कुछ भी हो, हम मुड़ के नहीं देखेंगे। फिर ज्यादा समस्या आ गई तो उससे पूछेंगे, पिताजी हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, तो तुमको किसने कहा था शादी करने के लिए? अब किया ही है तो उसको भोगो, निपटो। ये उत्तर आता है। और वह संतान स्वतंत्रता के मार्ग पर चलना चाहती है तो आप क्या कहते हैं? बहुत कठिन है वो, बहुत कठिन है वो। उसका दिमाग और बिगाड़ देते, बहुत कठिन है, दिमाग और बिगाड़ देते। और सबसे ज्यादा विकल्प तो माता पिता को ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे हमें, ये और रोग है, ये व्यर्थ का रोग, मानसिक रोग। समझ में ऐसी प्रथा है, लेकिन कितना गलत है ये। इसके कारण से हमारा घर आश्रम बनने से वंचित है। घर को आश्रम बनाया जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। कैसे? सभी लोग आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लें, अपने घर को आश्रम बनाए और क्या करें, करने के लिए सब कुछ छूट है। ब्रह्मचर्य से रहना, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, कमाना खाना, सबके लिए छूट है। 7 प्रतिमा भी अगर लेते हैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के कहां रहते हैं? अपन घर में ही रहते हैं। और घर में पुत्री 7 प्रतिमाधारी, पिता 7 प्रतिमाधारी, लड़का 7 प्रतिमाधारी, मां 7 प्रतिमाधारी, हैं? 28? उसको मिला रहे हैं क्या? ये प्रतिमाओं को मिला रहे हैं। हमने कहा है कि आश्रम में आने वाले लोगों की 28 गिनती हो रही क्या कहीं? घर को आश्रम बनाने का सोचना चाहिए और ये हो सकता है। भावना रखनी चाहिए, भावना को प्रबल बनाना चाहिए। जब धर्म के प्रति इतने आस्था, श्रद्धा, अनुराग रखते हैं तो क्या ये संभव नहीं है? क्या कभी ऐसा भी सोचा है, चिंतन किया है, ऐसा दिमाग में आया है कि हमारा घर भी आश्रम बन सकता है? और ऐसा आश्रम बनेगा तो उस आश्रम में और भी कोई आने के लिए और रहने के लिए अपेक्षा करता है तो क्या आप स्थान नहीं देंगे? आइए हमारे पवित्र आश्रम में आइए, आप भी रहिए, अपन सभी मिल करके धर्म साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, ब्रह्म को ब्रह्मा बनाएंगे ब्रह्मचर्य में रहकर। ये उत्तम ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने की कला है। और एक संतान को कम से कम धर्म के रास्ते पर हर घर में लगाना चाहिए। सुन रहे हैं सभी? मौके पर नहीं सोना। जब मौके की बात आती है ना, उस समय ऐसे रहते हैं हम, ऐसा नहीं करना। घर की एक संतान को धर्म मार्ग पर अवश्य लगाने का संकल्प शादी होने के बाद प्रत्येक को रहना चाहिए। कैसे धर्म मार्ग पर? घर से बाहर निकालो ये नहीं कह रहे, एक को शादी करना ही नहीं, कराना ही नहीं। हाँ, एक ही घर का एक ही लड़का तो ठीक है, एक को एक, दो की क्या जरूरत है? एक तो एक, दो कहां से लाएंगे फिर? यदि तीन है एक, दो है एक, एक है एक। और ऐसा यदि करेंगे, हमारा घर कभी भी दुखी नहीं रहेगा। आश्रम में दुखी रहते हैं कोई लोग? नहीं, आश्रम में कोई भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा है। वह धर्म को जानता है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, चिंतनशील है। वह असल में असली जीवन को जी रहा है। आर्य खंड में जन्म लेने के जन्म को सफल बनाया, वो दुखी कैसे होगा? सार्थक बनाने के लिए आठ भव मिलते हैं। इस बात को माता को भी सोचना चाहिए, पिता को भी सोचना चाहिए और बच्चों को भी सोचना चाहिए, उनके बच्चों को, जिनके बच्चे वो हैं, वे बच्चे भी सोचे, सोचकर आगे बढ़ सकते कि नहीं, क्या नुकसान है? लेकिन दिमाग बिगाड़ने वाले आसपास के लोग बहुत रहेंगे। सावधान, सावधान, वे लोग कुछ भी कहते हैं, ये आ गए बड़े धर्मात्मा आ गए, ऐसा टांट कसते हैं। और धर्मात्मा उसको सुन करके समताशील रहता है, अपनी समता को छोड़ता नहीं। वो अज्ञानी है, धर्म का कुछ भी नहीं जानता, भगवान को भी नहीं जानता, गुरु को भी नहीं जानता, अपने आत्मा के धर्म को भी नहीं जानता, ऐसा कहता है तो कौन सी आश्चर्य की बात है? अज्ञानी है। उसके विकल्प को मुझे दिमाग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक ज्ञानी हूं, धर्मात्मा हूं, और मैं उनके बातों को सुन करके मैं अपना रास्ता छोड़ दूं तो मेरे में और उस अज्ञानी में अंतर क्या है? ऐसा सोचना चाहिए। सुन रहे हैं क्या सोचना चाहिए? बहुत बिगाड़ने वाले लोग रहते हैं आसपास में, दिमाग में नहीं लेना, दिमाग खराब हो जाएगा। धर्मात्मा उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना करता रहता है आश्रम में रहकर। उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला वह छोटा सा व्रत लेकर के अभी साधना कर रहा है, लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य की उपलब्धि आश्रम में नहीं होती। गृहस्थ आश्रम में उत्तम ब्रह्मचर्य की उपलब्धि नहीं है, साधना है किंचित व्रत को लेकर के, किंचित पापों को छोड़कर, किंचित साधना करते करते एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। जब वह अपने सामने रहने वाले एक चेतन और अचेतन परस्पर में जो हम स्वामित्व रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये खेत, ये दुकान, ये धन, ये संपत्ति, ये नौकर, ये चाकर, सभी रह सकते हैं, ये सब रखते हुए भी वह सात प्रतिमा का धारी बन सकता है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, और पंचम गुणस्थान में ही यदि वह साधना करते करते मरण भी करेगा तो देखो मनुष्य बहुत तो आठ मिलते हैं, ये कितने नंबर का है हमको पता नहीं, लेकिन ये अवश्य है कि वह आश्रम में रहकर अच्छी तरह से संलेखना मरण कर लेता है, घर ही आश्रम है, अच्छी तरह से संलेखना मरण अगर करता है तो उसके लिए कहते हैं आठ ही भव ज्यादा से ज्यादा वह धारण करेगा। कैसा? उस भव से तो वह, मनुष्य भव से तो वह देवगति में जाएगा, नियम से अन्य गति में नहीं जाता है, ये व्रती है, आश्रम में मरण कर रहा है, आश्रम में मरण कर नीचे जाएगा कभी नहीं, तिरंज गति में जाएगा कभी नहीं, मनुष्य गति में जाएगा बिल्कुल नहीं, मनुष्य भी नहीं बनेगा, क्योंकि आश्रम में रहकर जो इतना पुण्य इकट्ठा किया है वह पुण्य आपको मनुष्य गति भी नहीं दिलाएगा। पुण्य का फल देवगति, एक बार आपको देवगति जाना ही पड़ेगा, कम से कम एक बार, और ज्यादा से ज्यादा एक बार देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, आठ बार उस भव को लेकर के आठ बार। और ऐसा मरण यदि आपका अपने घर में हुआ तो ध्यान रखना, एक बार भी मरण हुआ तो हम 16 की कैटेगरी में कैंसल हो गए, वो 16 में घूमना ही नहीं पड़ेगा, 24 में भी नहीं जाना पड़ेगा, 24 में नहीं जाना पड़ेगा। अब जो बचे हैं, आठ बचे हैं, उस आठ के भीतर बस अधिक से अधिक आठ भाव में जाएंगे तो एक बार देव बने फिर मनुष्य बने, देव बने फिर मनुष्य बने, चार बार देव, चार बार मनुष्य, ये करना है। इसलिए अपनी संतान को धर्म मार्ग पर लगाइए। तीर्थंकरों ने आप लोगों के लिए ही उपदेश दिया है, उनके उपदेश के अनुसार उनके रास्ते पर हम यदि चलेंगे तो ये कल्याण हमारा ही होना है। किसका कल्याण होना है? हमारा। और ब्रह्मचर्य व्रत लेने के उपरांत इतनी स्वतंत्रता आती है, इतनी स्वतंत्रता आती है कि वह त्यागी वहीं पर नहीं बैठता और आगे बढ़ने लगता है, प्रतिमाओं में तरक्की कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है, साहस आता है। ब्रह्मचर्य ऐसी आत्मा के लिए शक्ति प्रदान करती है जिस शक्ति के माध्यम से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं प्रत्येक समय में। ब्रह्मचर्य से आत्मबल बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन की एकाग्रता अत्यधिक बढ़ती है, ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय, मन, वचन, काय की हमारी जो प्रवृत्ति है उसमें एक पवित्रता आती है, काया की प्रवृत्ति उसमें भी निर्मलता है, वचन प्रवृत्ति उसमें भी निर्मलता है, मन की सोच उसमें भी निर्मलता आ गई। इस प्रकार मन, वचन, काय संबंधी जो भी व्यावहारिक धर्म हमारा संपन्न होता है वह पवित्रता के साथ संपन्न होता है, और ऐसी पवित्रता को लाना कोई कठिन बात नहीं है, साहस करे तो है, जब जागो तब सवेरा, करे तो है, नहीं करे तो अंधेरा है। आंख में छो अभी अंधेरा ही है, हाँ तो अभी अंधेरा ही है, सूर्योदय नहीं हुआ, आंख खोलेंगे तो प्रकाश है, आंख मीचे रहेंगे तो अंधकार अंधकार ही, जब जाए जब जगेंगे तब सवेरा, अभी जगते हैं तो अभी सवेरा, बाद में जगते हैं तो बाद में सवेरा। तो आज पर्व का अंतिम दिवस, आप लोग सोच रहे होंगे आज छुट्टी है, अगली वर्ष लौकर या पर्व को विदाई कर रहे हैं क्या? नहीं, विदाई नहीं करना, ये पर्व हमारे जीवन का प्रति समय प्रति दिवस का धर्म बनना चाहिए, ये अपने जीवन में साकार बनना चाहिए। ये 10 दिन के लिए नहीं होता, ये हमारा आजीवन निरंतर चलने वाला धर्म है। ऐसे धर्म के बंध संबंध में प्रवचन खूब सुना, क्लास के माध्यम से भी प्रवचन खूब सुन लिया, इतना ज्ञान हो गया है, इतना कुछ मिल गया है कि उसको लेकर के हम गैरेज के पास जाने की भी जरूरत नहीं, हमारे पास आउट निकालने के सारे सामग्री दे दिए हैं, और यह सामग्री के माध्यम से हमारी चेतना की विकृत अवस्था को देखकर समझकर उसको बाहर निकालना है, ऑपरेशन करना है, और करते रहिए, ये करना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यह मनुष्य पर्याय बार बार मिलने वाली नहीं है, अपनी संतान को भी मार्ग पर लगाइए, खुद माता पिता भी इस मार्ग पर लग जाइए, इसी में असली सुख है, असली शांति है, असली धन जीवन का यदि कोई है तो वह धर्म है। धर्म किसी भी जन्म में किसी भी भव में जाओ, वह आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, एक बात है कि क्लास भी लगातार चलने वाली है, और क्लास में